प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे मौसम गर्मा का। जी हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का मौसम है, छुट्टियों का मौसम है, लोग सफर कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में बीमार और अकेले अफराद को क्या एहतियात करना चाहिए, बच्चों और बुजुर्गों को गर्मियों की छुट्टियों के इस सीजन में क्या खतरात लाहक हो सकते हैं, और ऑफ आवर्स डॉक्टर्स तक रसाई कैसे हासिल करें, इन मौजूदात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि गर्मियों के मौसम में खासतौर पर कौन से ऐसी अमराज हैं जिनके खतरात लाहक हो सकते हैं, और हम बहुत जिक्र सुनते हैं हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस का, उसके बारे में भी डॉक्टर बिलाल से पूछते हैं। डॉक्टर बिलाल साहब, SBS रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारे सामाइन को पहले तो ये बताइए कि ये मौसम गर्मा ऑस्ट्रेलिया में बढ़ता जा रहा है, और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि दर्ज हरारत में काफ़ी सालों में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है, कितनी हकीकत है इसमें?
अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सामीन। बड़ा मुनासिब मौजू है रेहान साहब, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, गर्मियों का मौसम है, छुट्टियों की फ़ज़ा है, हर शख्स की इस वक्त जो तवज्जो है वो छुट्टियों की फ़ज़ा की तरफ है और गर्मियों की तरफ कम है। आपने दुरुस्त फरमाया, अगर आप देखें मुशाहिदा करें पिछले स्टैटिस्टिक का जो कि ऑस्ट्रेलिया की, उसमें हर साल जो है गर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं पिछले सालों के मुकाबले में। अगर देखें आप लास्ट जो टॉप हॉट डेज जो गुजरे हैं 16 हॉट डेज, उसमें से 15 जो हैं लास्ट 15 साल में हुए हैं। अगर आप देखें एवरेज टेम्परेचर के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं, और एक अगर आप जायज़ा लें जो 28 नेशनल एवरेज टेम्परेचर जो इन टॉप एक्सट्रीम में हुए हैं 1910 से लेकर 1941 तक 28 मरतब हो गए हैं, और 2013 में यही एक ही साल में यही फिनोमेना 28 मरता एक ही साल में हो गया है एज़ कम्पेयर टू 30। तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मौसम बदल रहा है और गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है।
अच्छा, लोग इसको मेरे ख्याल में लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि इतने सालों से अगर लोग यहाँ रह रहे हों, जैसे बहुत से लोग जो बहुत तवील अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, तारकिन वतन हैं 15-20 साल से, तो वो अगर कोई उनकी आदतें ऐसी थीं जो गर्मी के पिछले मौसमों में वो इख्तियार किए हुए रहते थे, और उनको एहसास नहीं कि मौसम कितना बदल चुका है। जैसे पहले ज़माने में शायद हो सकता है 15-20 साल पहले आप बच्चों को गाड़ियों में छोड़ के थोड़ी देर के लिए पार्किंग करके और उतर के कोई चीज़ लेने चले जाएँ, लेकिन अब मौसम की हिद्दत में वाकई इतना इजाफा हो चुका है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी बच्चों को आप गाड़ी में छोड़ दें तो क्या खतरा बहुत ज्यादा है?
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये बहुत न सिर्फ आपने बल्कि पिछले कुछ दिनों में खबरों में भी सुना होगा कि ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे बच्चों की पे बहुत उन पे असरात हुए हैं। तो एक तो चीज़ ये कि जो लोग यहाँ काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं वो घर से एयर कंडीशन से निकल के गाड़ी की एयर कंडीशन में जाके वहाँ से शॉपिंग सेंटर की एयर कंडीशन में चले जाते हैं। बंद गाड़ी में कभी अकेले खुद नहीं बैठे हैं तो उनको एहसास नहीं होता कि कितनी जल्दी गाड़ी हीटअप हो जाती है, और ये हीटअप बहुत तेज़ी से होती है, और इसमें फिर ना विंड फैक्टर है कि जो आपकी हीट कम हो सके, और इसके काफ़ी मुज़िर असरात होते हैं।
तो इस वक्त क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियों का मौसम भी है और गर्मियां भी हैं, लोग बाय रोड भी बहुत ट्रैवल करते हैं, यानी एक रियासत से दूसरे रियासत, एक शहर से दूसरे शहर अपनी पूरी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, तो इसमें ख़ासतौर पर मेरे ख्याल में बच्चों के हवाले से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, बुज़ुर्गों के हवाले से। तो ये बताइएगा कि ये हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस की जो हम बात करते हैं ये क्या चीज़ है?
देखिए जी, ये फिनोमेना तो एक ही है, ये उसकी सीवियरिटी जो कि उसकी शिद्दत की हिसाब से इसको मुख्तलिफ हिस्सों में इसको बांट दिया गया है, जिसको आप हीट जैसे कहते हैं हीट रैश, प्रिकली हीट रैश जिसको कहते हैं, वो इसका अव्वल शुरू शुरू का है जिसमें आपको है ना थोड़ी सी रैश हो जाती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, इचीनेस होती है, थोड़ी पेनफुल रैश हो जाती है, वो इसका मतलब ये कि गर्मी ज़्यादा है आपकी जिस्म के लिए, बॉडी आपकी हीट लूज़ करने की कोशिश कर रही है, जिसको आप हीट स्ट्रेस कहते हैं, हीट क्रैम्प्स भी कहते हैं लोग, तो इसका मतलब ये अगली स्टेज में आपकी स्वेटिंग्स के थोड़ा सा पानी भी निकल रहा होता है आपकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, और सॉल्ट्स भी चले कम हो जाते हैं, तो उससे आपको मसल्स में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है।
अच्छा, इस बारे में भी काफ़ी हाइप क्रिएट होती है कि एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कुछ लोग बाकायदा इसको एडिक्ट हो जाते हैं, यानी वो उनको आम किस्म के मशरूबात या सॉफ्ट ड्रिंक से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जब रोड्स के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं कुछ आपको एनर्जी थोड़ी महसूस करने के लिए, तो ये एनर्जी ड्रिंक्स की कितनी इफादियत है?
देखिए यहाँ सब एनर्जी ड्रिंक का कमर्शियल उससे बहुत ताल्लुक है, इसकी बड़ी हैवी एडवर्टाइजमेंट है, और इस लेकिन एनर्जी ड्रिंक अगर आप देखें बेसिकली वो बनाई गई हैं इसमें आपको एनर्जी दी जाए, इन गर्मी की उसमें आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है या बैलेंस रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसको कहते हैं, जो कि एक मामूली कॉम्बिनेशन में होता है। ये इट्सेल्फ जो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें लोड सॉल्यूट का, जिसको हम कहते हैं कि नमक या शुगर का लोड ज़्यादा होता है, वो आपको रिहाइड्रेट नहीं करते, आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन आपको इन सूरत हालों में एनर्जी की नहीं, पानी की जरूरत होती है सिर्फ। तो वो एक तरह का आपके ऊपर ओवरलोड कर रहे हैं।
यानी पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है?
जी, पानी का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। उसको अगर आप किसी तरह मेडिकली, अगर हम उसको कहें इम्प्रूव कर सकते हैं, तो रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसको कहते हैं, एक छोटी सी मकदार में जो कि बना बनाया भी मिलता है, गैस्ट्रोलाइट, हाइड्रोलाइट, इन सब नामों से, उसको अगर आप थोड़ा सुपीरियर कह सकते हैं, तो इन सूरत हाल में वो कह सकते हैं।
छुट्टियों के ज़माने में ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग घरों पर अकेले होते हैं, और बहुत सी ऐसी मराकज़ हैं एमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल के अलावा जो आमतौर पर बंद होते हैं, डॉक्टरों के क्लिनिक बंद हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर क्लोज डाउन है। आप बहुत आसानी से तिब्बी जरूरियात अपनी पूरी नहीं कर सकते। ये ऑफ आवर्स डॉक्टर्स का जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में निज़ाम है, इनसे रसाई कितनी आसान है? और अगर लोग घर में अकेले हों और वाकई उनको किसी हंगामी मदद की ज़रूरत हो, तो क्या ऑफ आवर्स डॉक्टर का इस्तेमाल सूदमंद हो सकता है?
जी देखें, हो तो सकता है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सिस्टम पे अगर नज़रसानी करें, तो आपको ये लगेगा कि मेजॉरिटी, जो मेजर पार्ट है वो हेल्थ सिस्टम का, वो प्रिवेंशन पे है। और प्रिवेंशन पे आपको प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है, कैंपेन चलाई जाती हैं, आपको आगाह किया जाता है, आपका डॉक्टर आगाह करता है कि ये इसकी निशानियाँ हैं और ये आपकी तदाबीर हैं, तो वो आप उन तदाबीर और निशानियों में रहें, तो इंशाल्लाह इससे आगे बात नहीं बढ़ती। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए, तो उसमें आपका जो रेगुलर डॉक्टर है, उनके भी आफ्टर आवर्स अरेंजमेंट होते हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं। लोकल हॉस्पिटल, जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल से आप बात करके वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आफ्टर आवर्स सर्विसेज भी हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि छुट्टियों के मौसम में अक्सर लोग बाहर होते हैं, तो उस पर काफ़ी ऑलरेडी स्ट्रेन होता है।
अच्छा, एक सवाल हमें हमारे सामईन की तरफ से भी आया है, और उसमें उनसे पूछा गया है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हकीमी इलाज या हिकमत और होम्योपैथिक, इस तरह के जो आयुर्वेदिक निज़ाम हैं, उनकी क्या क्या हैसियत है, क्या उनसे भी कुछ फ़ायदा यहाँ उठाया जा सकता है?
देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया जो है, इस बेसिकली जो इस साइंटिफिक उस पर रेगुलेटेड है, नेचुरोपैथ है, आयुर्वेदिक है जिसको हम हिकमत कहते हैं, होम्योपैथिक, इन सब चीज़ों पे अभी तक कोई रेगुलेशन और रेगुलेटेड कोई इसका सिस्टम नहीं है। फ़ायदा तो आप किसी भी चीज़ से भी उठा सकते हैं अगर वो फ़ायदा पहुंचाए तो, लेकिन उसके लिए कोई ना अथॉरिटी है ना, उस पे बातचीत तो हो रही है मुख्तलिफ हलकों से, लेकिन अभी तक कोई रेगुलेशन उसका है नहीं।
यानी ये हाई रिस्क एरिया है, अगर आप इस फील्ड में जाके कोई दवा लेते हैं और उसका कोई रिएक्शन होता है, तो दोनों पार्टीज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगी।
जी, इसलिए कि इसमें ना आपको उसकी ट्रीट करने वाले की क्वालिफिकेशन का अंदाज़ा है, और ना ट्रीट जो कर रहा है उसके आप मरीज की बैकग्राउंड का अंदाज़ा है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली एक तरह का जिसको कहते हैं एम्प्लॉइंट प्रोसेस है बिटवीन यू एंड द थेरेपिस्ट।
अच्छा, और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र किए, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, खासतौर पर ओवरसीज ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो अपनी अपनी दवाएँ साथ ले जाना चाहते हैं, अगर उनकी दवाएँ ख़त्म हो जाएँ वहाँ पाकिस्तान में या बैरून मुल्क में, तो वहाँ तो कोई इस तरह का निज़ाम डायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाके भी दवाएं ले सकते हैं, उनको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए?
देखिए जी, इसके लिए वही कि पहले से आप अपनी छुट्टियां प्लान करें, और उसमें ख़ास तौर पे अगर आप किसी रेगुलर दवाइयों पे हैं, तो आप अपने जीपी से उसके लिए पहले से यहाँ से दवाइयां ले लें। आपको 6 महीने तक की दवाइयाँ वो एक साथ दे सकते हैं, तो आप वो ले लें, उसको ओरिजिनल पैक में रहने दें। दूसरे, अगर एक इजाफी तौर पे एक उससे लेटर भी उन्हें बनवा लें ट्रैवल वाला, तो ये सारी चीज़ें आपकी ताउन करेंगी। दूसरी एक अहम चीज़ कि ट्रैवल में ख्वाब गाड़ी से कर रहे हो या वो चीज़, दवाइयाँ उतनी ही लेके जाएं जितनी ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर की जो वेरिएशन है, हॉट टेम्परेचर्स में गाड़ी में दवाइयाँ छोड़ देना या किसी गर्म जगह पर छोड़ देना, तो दवाइयों की इफादियत में कमी आ जाती है।
और इसी तरह उन दवाओं को यहाँ ऑस्ट्रेलिया लाते वक्त भी आपको डिक्लेयर करना पड़ती हैं दवाएं, तो अगर आप बड़ी मकदार में ले जाएंगे तो उनकी वापसी के वक्त भी आपको लेटर दिखा सकते हैं।
जी, जो आप लेटर लेके ले जाएंगे वो ही उसमें काम आएगा, लेकिन दोबारा मैं यही बात कहूँगा, सिर्फ उतनी लेके जाएं जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि दवाइयाँ अगर सही टेम्परेचर पर ना रखी जाएँ तो अपनी फादियत उसमें खो देती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, हमसे बात कर रहे थे गर्मियों के मौसम के हवाले से, कि उसमें किस तरह की एहतियात की जा सकती है। और डॉक्टर साहब चलते चलते आवाम को ये भी याद दिला दें कि अगर उनके पास कोई पालतू जानवर या पैट्स मौजूद हों तो उनको भी उसी तरीके से तवज्जो की ज़रूरत होती है गर्मियों में।
जी बिल्कुल, देखिए न्यू साउथ वेल्स ने कैंपेन भी चलाई है मौसम के हिसाब से, वो यही कहते हैं कि पानी बहुत पिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, आपको प्यास लगे ना लगे, अपनी जिस्म को ठंडा रखें, साए में रहें, जो भी चीज़ें उनके साथ, और केयर फॉर अदर्स, पेट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं आपके या रिलेटिव्स हैं, इन्फेंट्स हैं, नेबर्स हैं आपके,
और
उस इन सबको भी, और प्लान वेदर फोरकास्ट देखें।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मौसम की रिपोर्ट के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, और हमारे प्रोग्रामों के तमाम हिस्से हमारे sbs.com.au/urdu पर भी मौजूद हैं, हम फेसबुक पर भी हैं, और हमारे मसीही भाई बहन जो इस वक्त क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं उन सबको पेश की मुबारकबाद। और इसके साथ ही अपने मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ फिर मिलेंगे, गर खुदा लाया अल्लाह ने गिबान।